देशों से पधारे हैं आप सभी का बाबा के घर में मधुबन आंगन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज बाबा की हमने मुरली सुनी। बाबा ने एक बहुत अच्छी रमणीक बात कही आज कि जैसे पानी में, तालाब में, सागर में पत्थर फेंको तो क्या होता है, लहरें उठती है। तो ऐसे ही क्या करो, तुम भी पत्थर मारो। और हमारा पत्थर मारना मतलब ज्ञान का, कोई भी एक टॉपिक उठा लो, वहां पे सिर्फ एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती है। यहाँ पर हमारा पत्थर क्या है, एक टॉपिक। एक टॉपिक उठाएंगे तो मन उस पर सोचना आरंभ करेगा, वही उसकी लहरें होंगी। कि जैसे आज के लिए बाबा ने, अगर हम, बाबा ने कहा कि एक टॉपिक उठाओ और उस पर कब, क्या, क्यों, ऐसे अपने आप से सवाल करते जाओ तो वो विषय क्या हो जाएगा, उसकी गहराई समझ में आती जाएगी। तो आज हम टॉपिक लेते हैं, आज का जो स्लोगन था यही कहा ना बाबा ने, एक टॉपिक ले लो। तो आज का टॉपिक हम लेते हैं स्लोगन में, जो टॉपिक था क्या था आज स्लोगन, मैं और मेरेपन के अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड है। ये एक हमारा, हमने पत्थर उठा लिया, अभी ये मारना है। और अभी अभी हमने कल ही विजयादशमी मनाई है, दशहरा मनाया ना हमने सभी ने। और बाबा ने भी कहा कि वास्तव में रामायण, गीता, महाभारत सब इस समय की बातें हैं। तब ये इस समय की बातें हैं तो अब हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, कैसे इस समय की बातें हैं रामायण, कैसे महाभारत इस समय की बातें हैं, कैसे गीता इस समय की बात है, और कैसे इन बातों को समझते हुए इस मैं और मेरेपन को फिनिश करने के लिए मेरे पास विधि मिल जाएगी। समाप्त तो नहीं कर देंगे बाबा, 80 साल से लगा हुआ है इसको समाप्त करने के लिए, नहीं तो ये रातों रात में कोई ऐसी घटना नहीं घट जाएगी। लेकिन एक मुझे अच्छी सी विधि, एक गहरी समझ के साथ कि यही एकमात्र विधि है जिसके बल से मैं अपने मैंपन को, मेरेपन को खत्म करके रियल गोल्ड बन सकता हूं। तो जैसे रामायण की बात लेते हैं, जैसे कल हमने दशहरा मनाया, तो दशहरा भी किसका प्रतीक है, रावण जो हमने मारा, किसको मारा वो, आप सबने शायद सुना भी होगा कि अयोध्या एक बार माँ राम से कहती है, कौशल्या माँ, कि तुमने लंकाधिपति रावण को मारा। जब रावण को मार के आया राम, तो राम का जवाब क्या था, कहता है माते, उस महाप्रतापी, महाबलशाली, महाज्ञानी था ना, वो महाज्ञानी था, बलशाली था, और साथ साथ में प्रखर पंडित था, वो महाशिव भक्त था, चारों वेदों का ज्ञाता था, और शिव तांडव स्रोत का वो रचयिता था, लंकाधिपति था। तो रावण, राम उसकी ये महिमा करते हुए कहता है, माते, ऐसे महिमावंत रावण को मैंने नहीं मारा, उसके मैंने मारा। और इसीलिए तो बताते हैं कि जब रावण का वध किया जा रहा है राम के द्वारा, तो उसके जो दश शीश है उस एक एक को मारा जा रहा है बाणों से, लेकिन वो गिरता है फिर लग जाता है, फिर गिरता है फिर लग जाता है, और ये सिलसिला चलता ही रहता है, इसको कहीं पर भी समापन ही नहीं होता है, क्योंकि एक गिरता तो जरूर है लेकिन गिरने के बाद फिर से लग जाता है। और तब किसी ने युक्ति बताई कि राम, रावण ऐसे नहीं मरने वाला है, इसको तुम कहां मारो, इसकी नाभि में मारो, तब जाकर मरेगा ये। क्यों कहा नाभि में मारो, क्योंकि दश शीश जो है वो विकारों के प्रतीक है, और ना भी वो विकारों की जड़ का प्रतीक है, कि यहां से ही ये विकार उसके पैदा हुए हैं। तो अगर जड़ को ही खत्म कर देंगे, जैसे वृक्ष को खत्म करना है तो उसके पत्तों को टालियों को खत्म करेंगे तो फिर आती जाएगी ना वो, लेकिन अगर उसके जड़ को ही हम खत्म कर दे तो पूरा वृक्ष खत्म हो जाएगा। तब उसको कहा गया कि उसकी नाभि में मारो, अर्थात ये विकारों की जो जड़ है, देह अभिमान, मैं और मेरापन, इस पर एक बाण चला दो, रावण खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही दिखाया जाता है। तो रावण को मारना है मतलब मैं और मैपन को मारना है, तब जाके हम सच्ची विजयादशमी मनाएंगे। तो ऐसे रावण को मारने के लिए राम की जरूरत है। राम ही रावण को मार सकता है। तब राम और रामायण को ले ले, अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि राम माना क्या। किसी ने कहा राम माना, राम माना प्रकाश, लाइट, ज्योति, और मां माना मेरे भीतर। राम माना वो प्रकाश, वो ज्योति जो मेरे भीतर है। और ऐसे राम का जन्म कहां हुआ बताते हैं, दशरथ के घर में, मां कौशल्या की गोद में ऐसे राम का जन्म हुआ है। अर्थात क्या दशरथ माना क्या, रथ गाड़ी, शरीर को हम रथ कहते हैं, और दश माना 10, 10। इस रथ को चलाने के लिए 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, जिसमें से 5 को कहते हैं ज्ञानेंद्रियां और 5 को कहते हैं कर्मेंद्रियां। कौन सी है 5 ज्ञानेंद्रियां? आंख, जिससे रूप और रंग को देखते हैं तो मन ललचा जाता है, अरे ये बड़ी सुंदर चीज है, मुझे चाहिए ये। आंखें अगर वो सुंदर चीज देखे ही नहीं तो मन ललचेगा क्या? कानों से बहुत सुंदर संगीत सुना, ये मुझे चाहिए। तो ज्ञानेंद्रियों में एक है आंख, जो रूप और रंग देखती है, कान जो शब्द सुनते हैं, ध्वनि को सुनते हैं, और नाक जो गंध को लेते हैं, फिर वो गंध दुर्गंध या सुगंध अच्छी लगी तो अरे ये वाला धूप आपने कहां से लाया, मुझे भी ऐसा ही धूप चाहिए। वो बाबा के कमरे में धूप जलता है ना, बड़ी अच्छी खुशबू है उसकी। या कहीं जाएंगे, समझो कभी नहीं, कभी कहीं चूहा मर जाता है कुछ, यहां कुछ तो भी है, कितना गंदी बांस आ रही है, कहां से पता चला? नाक, उसको ज्ञान हो रहा है उस चीज का। कुछ खाया जीभ को, हाँ बड़ा मीठा है, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, मक्खन जैसे, तो इसको स्वाद का पता चलता है। और त्वचा, जिसको स्पर्श का पता चलता है, अरे बड़ा कोमल है, देखो ना इस पर बैठो कितना अच्छा लग रहा है। सनली पे बैठते ना इतना कड़क कड़क लगता है, हार्ड हार्ड लगता है, स्पर्श से हम उसका अनुभव करते हैं, यहां तक कि गर्म और ठंडे का भी अनुभव करते हैं। अरे हमारे कमरे में ना गर्म पानी नहीं था, मेरी तो दिल ही नहीं हो रही थी ठंडे से नहाने की, टच ही तो हो रहा है ना वो। तो त्वचा, स्पर्श, ज्ञान, इसलिए इनको 5 ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां कौन सी? मुख जो बोलते हैं शब्द, हाथ जिससे कुछ चीजें करते हैं या पकड़ते, पकड़कर ही तो कुछ करते हैं ना, और पांव माना चलते हैं, और 2 कौन सी इंद्रियां हैं? एक है मल त्याग करने के लिए इंद्रिय है जो, और एक है प्रजनन अंग जो होता है। ये सब कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियों वाला ये रथ है, इसको कौन चला सकता है? किसने, किसकी गोद में जन्म लिया है राम ने? दशरथ के घर में, कौशल्या की गोद में। कौशल्या माना क्या? कुशलता स्किल हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को कुशल बनाने के लिए कुशल भारत की एक मिशन चलाया अभियान चलाया है। कौशल्या माना कुशलता स्किल्स हुनर। तो ऐसी रथ जिसमें 10 इंद्रियां हैं ऐसे रथ को चलाने वाला रथवान भी कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए, तभी वहां पे राम का जन्म हो सकता है ना। या दूसरे अर्थों में अगर कहे, अगर वो राम की क्या कहे कि अवेयरनेस है, राम माने आत्मा कहा ना, राम माना प्रकाश, मां माना जो मेरे भीतर है, इस रथ के भीतर जो राम है, जब कुशलता पूर्वक इन 10 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर इस रथ को चलाता है, तब जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। तब कहा कि राम ने जन्म कहां लिया? दशरथ के घर में, मां कौशल्या की गोद में, और शहर का नाम क्या था उसके? अयोध्या। कि जहां पर अयोध्या माना जहां कभी युद्ध नहीं होता, जहां अंदर में विचारों का कहीं युद्ध नहीं चलता है, ऐसी जगह पर ही तो आत्म अवेयरनेस होती है ना, नहीं तो कहां होती, नहीं तो कुछ कुछ चलता रहता है। तो अगर हम देखें कि हम इसीलिए क्यों कहते हैं राजयोग का अभ्यास, जब हम कहते हैं कि करना है, उसकी पहली स्टेप क्या है? राजयोग माना आत्मा परमात्मा का मिलन हम कहते हैं, और ये राजयोग से ही हमारी मैल धुलने वाली है, हमारा मैं और मेरापन राजयोग से ही जाने वाला है। परंतु वो राजयोग क्या चीज है? तो कहा आत्मा और परमात्मा का मिलन, और वो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके उसकी पहली स्टेप है खुद से मिलन। खुद से मिलन माना क्या होता है? पहले कहते ना कनेक्ट टू योरसेल्फ, पहली स्टेप है कनेक्ट टू योरसेल्फ, अपने आप से पहले कनेक्ट हो जाइए। क्यों ऐसा कहने में आ रहा है? हम क्या अपने आप से कनेक्ट नहीं है क्या? देखो हम परमधाम से जब उतरे, बाबा कहते परमधाम में सोच नहीं चलती है, भले आप बाबा के करीब हो लेकिन आपको वहां कुछ भी अनुभूति नहीं है, कुछ विचार भी नहीं चलता आपको कि मैं बाबा के बहुत करीब हूं, कुछ भी नहीं, वो मर्ज है सब कुछ। जैसे बीज में बीज को बोते हैं तो सारा वृक्ष इमर्ज होता है, लेकिन जब बीज बीज रूप में सब कुछ उसके अंदर मर्ज है, ऐसे ही हम परमधाम में बीज रूप में हैं, इसलिए हमारे मन बुद्धि संस्कार भी मर्ज पड़े हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा रूपी बीज मां के गर्भ रूपी धरती में प्रवेश करती है, मन बुद्धि संस्कार इमर्ज होता है, शिशु रूप में जन्म लेते हैं हम। तो बाबा कहते हैं जब हम आरंभ में आए तो हम आत्माभिमानी थे। क्यों? जब हम आरंभ में आए आत्मा शरीर का समागम तो हो चुका था, लेकिन हम क्यों देहाभिमानी नहीं थे, क्यों हम आत्माभिमानी थे? क्योंकि देखो ये दो चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर, लेकिन इन दोनों के बीच, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? जैसे भारत के अंदर हमारा जो प्रजातंत्र है उसमें हम कहते हैं प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी है, लिंक है। मंत्रिमंडल को कुछ बोलना है तो प्रधानमंत्री को बोलेगा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बात जाके राष्ट्रपति के सामने रखेगा, और राष्ट्रपति को कुछ बोलना है तो वो भी प्रधानमंत्री को बोलेगा, प्रधानमंत्री जाके मंत्रिमंडल को बताए, वो बीच की कड़ी है। ऐसे ही ये जीवन जो है इसमें भी दो बातें हैं, एक है आत्मा और एक है शरीर, इन दोनों के बीच की कड़ी कौन है? मन। तो जब पहली बार हम उतरे हैं नीचे, हम आत्म स्वरूप में उतरे हैं, इसलिए मन को ज्यादा कनेक्शन आत्मा के साथ है, देह के साथ भी है लेकिन मन ज्यादा कनेक्शन आत्मा के साथ रखता है और आत्मा जो आत्मा से जो उसको मिलता है वो देह के द्वारा इन इंद्रियां जो 10 इंद्रियों की बात की ना उसके द्वारा प्रकट करता है। जिसको ही बाबा ने कहा कि आप सत्युग में जब होते हो तब क्या करते हो, किसी को किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति नफरत है, किसी चीज की इच्छा है, इच्छा मात्रम अविद्या, कि भले ही आत्मा वहां से उतरी है बैटरी फुल्ली चार्ज और जो भरपूर होता है वो बाहर की चीजों से अट्रैक्ट नहीं होता है, जो खाली होता है तो बाहर दिखता है तो अट्रैक्ट हो जाता है। तो आत्मा चूंकि भरपूर आई है और मन इन दोनों के बीच की कड़ी है तो भरपूर वाला बाहर देगा ना, तो आत्मा मन आत्मा से ज्यादा कनेक्टेड है और आत्मा से उसको, क्योंकि आत्मा उतर के जब आई पहले तो क्या लेकर आई साथ में। आज एक दुकान खोलते हैं, बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, भाई पैरों पर खड़े होना है, इसको दुकान लगा के देनी है ताकि ये खुद कमाए अभी, तो दुकान लगाते हैं कमाने के लिए, लेकिन वो कमाने के लिए जो दुकान लगानी है उसके लिए भी पहले पैसा चाहिए। कमाना माना पैसा कमाएंगे ना, परंतु अभी कमाया नहीं है, लेकिन कमाने के लिए जो दुकान लगानी है उसके लिए भी मुझे पहले पैसा चाहिए। वो कहां से आएगा, अभी कमाया ही नहीं, तो अभी तो कमाया ही नहीं है, कहां से आएगा पैसा। वो माँ बाप देते हैं, बाप दादा की प्रॉपर्टी होती है वो। तो हम भी जब ऊपर से नीचे आए हैं तो बाप दादा हमको ऐसे ही नहीं भेजते, हमारे बाबा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो देखकर हमको भेजते हैं, भरपूर करके, हमारी जो गागर है वो भरपूर। इसलिए तो हम 16 कला संपूर्ण कहलाते हैं ना वहां पे, कि बाबा के पास जो जो संपत्ति है, जो ज्ञान गुण शक्तियां है वो सब मेरे में है और उसके साथ मैं नीचे उतरती हूँ, और इसलिए मेरा हर कर्म जो होता है सत्युग में उस हर कर्म से आपस में प्रेम की लेन देन हो रही है, खुशी की लेन देन हो रही है, शांति की अनुभूति हो रही है, आनंद का अनुभव हो रहा है, किसी चीज की कमी नहीं महसूस हो रही है क्योंकि भरपूर आए हैं ना। लेकिन एक बार मैं नीचे उतर के आई, भले मैं देह से इन 10 इंद्रियों से वो सब आत्मा जो बाप की प्रॉपर्टी लेके आई उसका प्रदर्शन कर रही है और उसको एंजॉय कर रही है लाइफ को, लेकिन एक बार जन्म लिया, फिर शरीर छोड़ा, फिर लिया, फिर छोड़ा, अब आत्मा का इस देह के साथ अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये दोनों के बीच के लिंक है ना, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसके साथ अटैचमेंट और इधर का थोड़ा थोड़ा, वो कम कैसे होता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आत्मा के प्रेम शांति खुशी जो भी बाबा के संस्कार जो बच्चों के संस्कार है वो अनादि संस्कार है, और अनादि माना जिसका न आदि होगा न अंत होगा, फिर वो कम कैसे हो जाते हैं, कम कैसे हो गए वो, कैसे कम हुए बोलो, पत्थर फेंका है ना, बोलो लहरें निकालो, कैसे कर, हाँ कम कैसे हुए, वो तो अनादि है ना, अनादि का आदि भी नहीं अंत भी नहीं, जितना उतना ही रहेगा, फिर हम कैसे बोलते कम हुए। उसका एक कारण है, कम हुए का काम असली मीनिंग क्या है, कि जैसे हम यहां पर आए और क्योंकि बाबा कहते कर्म करने पर ही संस्कार बनते हैं, एक तो अनादि जो बनाए नहीं गए हैं, बने बनाए बाप दादा की प्रॉपर्टी, जैसे कमाऊंगा वो अलग चीज है, लेकिन कमाने के लिए दुकान लगा, बनी बनाई प्रॉपर्टी मेरे को बाप दादा से मिल रही वर्षे में। तो हम जब ऊपर से नीचे आए तो बाप दादा की मतलब वो प्रॉपर्टी तो लेकर आए वो संस्कार, लेकिन अब कमाने भी तो लग गए, कमाने लग गए माना शरीर के द्वारा, भले मन आत्मा वाली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट कर रहा था अपने हर कर्म में, लेकिन वो कर्म किया ना तो संस्कार बना ना, अब आत्मा के ऊपर संस्कार चढ़ते जा रहे हैं, और वो चढ़ते जा रहे जो संस्कार है ना, वो ओरिजिनल संस्कार को ढकते जा रहे हैं। इस रीति में हम कहते कम हुए, वरना वो तो अनादि है ना। शास्त्रों में जो ये बात आती है, भक्ति मार्ग में जो ये बात आती है कि आत्मा निर्लेप है, उसके पीछे भाव क्या रहा होगा? अनादि संस्कार कभी खत्म नहीं होने वाले, वो ज्यों के त्यों रहते। तभी तो देखो बाबा जब आते हैं पहला ही लेसन हमें देते, बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। जिस खुशी को, जिस प्रेम को, जिस आनंद को, जिस शक्ति को तुम बाह्य जगत में ढूंढ रहे हो, वो तो तुम्हारी खुद की पूंजी तुम्हारे पास है, तो कम कहाँ हुई? वो तो कहा तुम्हारे पास है, तो कम हमने क्यों कहा था? एक्चुअली वो ढकते गई। जो दूसरे दूसरे संस्कार हम बनाते गए ना, उसके कारण वो ढकती गई, ढकती गई। और इसीलिए जो देवी देवताओं को जो ताज दिखाए, डबल ताज, बाबा कहते वो पहले जो ताज है, एक तो रत्न जड़ित ताज है और एक है प्रकाश का ताज। लेकिन जैसे एक एक जन्म लेते जाते हैं, वो प्रकाश जो है इतना तक फैला है, वो थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है। इसीलिए तो त्रेता में आते आते 14 कला हो गए, और द्वापर में आके बाबा ने कहा 9 ताज, सिंगल ताज, वो पवित्रता का ताज उड़ गया ना हमारा। मतलब हुआ क्या? ढक गया हमारा प्रकाश। वरना आज भी बाबा यही कहते हैं ना, बच्चे तुम हो प्रकाश स्वरूप, तो कोई डाला क्या हमारे अंदर? हो सिर्फ स्मृति दिलाई, सिर्फ स्मृति दिलाई। क्योंकि वो ढकता गया, हम भूलते गए, हम भूलते गए। आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसे ही होता है ना पढ़ाई में भी। आज समझो जो मैंने पढ़ा, आज समझो क्लास जो भी सुन रहे बराबर याद रहेगा, कल दूसरी क्लास सुन लेंगे। आज जितना अच्छे से सुना सकोगे, कल जो दूसरी क्लास सुनी उसको सुना पाओगे, परसों फिर वो जो सुनी वो सुना पाओगे, और जो पहले सुन ली थी वो। परंतु अगर कोई बोलेगा नहीं याद करो, अगर वो कैसेट जो रिकॉर्ड है फिर से, हाँ 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 मुझे याद आ गया, याद आ गया, मतलब अंदर तो है ना, गया तो नहीं है ना अंदर से, तो अंदर तो है, सिर्फ क्या हुआ है उसके ऊपर दूसरा दूसरा चढ़ते जा रहा है। तो बात क्या थी कि मन जो है इन दोनों के बीच की कड़ी है, इधर है आत्मा, इधर है शरीर, बीच में है मन, इन दोनों को जोड़ रहा है। लेकिन जैसे ये वाले संस्कार बढ़ते जा रहे हैं ना, तो वो ढकते जा रहे हैं, तो मन ज्यादा इससे कनेक्ट हो रहा है, और इससे कनेक्ट होते होते ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ये धीरे धीरे कम, ये धीरे धीरे ज्यादा। और वो एक समय आता है जिसको बाबा कहते हैं त्रेता के एंड के बाद द्वापर आता है, वो धीरे धीरे वाला क्या होता है, ये जीरो हो जाता है, ये धीरे धीरे कम होते होते ये जीरो हो जाता है, और ये हावी हो जाता है मैपन, और वहां से देहाभिमान जागृत होता है। कामनाएं, मतलब हम दो युगों तक इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में थे, क्योंकि भरपूर होके उतरे थे, किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं। भले बाबा कहते हैं कि सबके जो ग्रेड अलग अलग होंगे, कोई राजा, कोई रानी, कोई दास, कोई दासी, कोई कुछ कुछ जो भी होंगे, पर किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो जब कमी ही नहीं है तो इच्छा किस लिए होगी? और जब ये स्मृति है कि मैं आत्मा हूं और हम सब वही वाली प्रॉपर्टीज लेके आए, तो वो क्यों होगा कि मैं छोटा मैं बड़ा, ऐसा वो भी नहीं उठेगा ना भाव कि मैं क्यों नहीं राजा बन गया, मेरे को छोटा, वो भी भाव नहीं उठेगा वहां पे। और इसलिए बाबा कहते वो, लेकिन धीरे धीरे वो संस्कार ढकते गए जो दूसरे बनाए उन्होंने ढाका, तो फिर जाके क्या हो गया, पहले पहले इच्छाएं जागी। और इच्छाएं किस नाम पे जागी? क्योंकि बाबा ने अभी मुरली में कल परसों ही बोला था कि सतयुग में आपको बराबर साक्षात्कार होगा कि अभी मैं दूसरी माँ के गर्भ में जा रहा हूं, जाके नया जन्म लूंगा। मतलब उस समय मुझे आत्मा का ज्ञान है ना, तभी तो मुझे क्लैरिटी है ना इस बात की कि मैं अभी ये शरीर छोड़कर दूसरी माँ के गर्भ में जाकर फिर एक नया शिशु के रूप में जन्म लूंगा, जो ब्रह्मा बाबा को था। ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था हमेशा, मैं कल जाकर मिचनू किशोर बनने वाला हूं जाके। माना वो आत्माभिमानी की स्थिति कितनी पक्की थी। ये देह और ये आत्मा दो अलग चीजें, वो कितना पक्का अभ्यास था बाबा को। लेकिन द्वापर में आते आते क्या हो गया, ये जीरो हो गया आत्मज्ञान। और तब वो जो छोटे बड़े पद थे ना, वो सताने लगे। और वो सताने लगे तो मन में आया मैं भी बड़ा बन जाऊं। कामना होना माना क्या होता है, एक दूसरे से आगे जाना ही होता है ना। उसके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए। वो बड़ा राजा कहलाता है, मैंने राजा कहलाना चाहिए। यही तो होती है ना इच्छाएं कामनाएं, और क्या होती है। धन मेरे पास ज्यादा होना चाहिए, समाज में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मैंने होना चाहिए, समाज के अंदर सबके सब मेरे अनुशासन में चलना चाहिए, माने मैंने राजा होना चाहिए। यही तो होती है ना कामनाएं, और कौन सी होती है। और वो हमारी जागृत हुई वहां पे, और इसी मैं पन्ने हमें फिर और ज्यादा ज्यादा, क्योंकि भले हम भूले थे लेकिन फिर भी उसकी लाइट हमको मिल रही थी ना, लेकिन ये मैंपन के संस्कार और ज्यादा ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। टोटल लाइट अंदर जैसे गुम हो गई, पर है अंदर है, कहीं गई नहीं है। वो संस्कार भी मेरे पास है, कहीं नहीं गया है वो, बस हम भूल गए। तो तब कहा कि मैंपन को, अगर मैं और मेरेपन को खत्म करना है तो आत्माभिमानी स्थिति को बढ़ाना होगा। अर्थात ये मुझे क्लियर बता रहे, ये जीवन आत्मा और शरीर इन दो के बीच का खेल है। आत्मा और शरीर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए मन है। अब ये मन जो इस शरीर से ही, मतलब शरीर की जो 10 इंद्रियां है ना, हम रूप देख रहे, रस दृश्य देख रहे हैं, अच्छी अच्छी व्यक्तियों को देख रहे हैं, वस्तुओं को देख रहे हैं, मेरे को भी ऐसा सुंदर बनना चाहिए, मेरे घर में भी इतनी अच्छी पेंटिंग होनी चाहिए, यही हो रहा है ना। आंखों से जा रहा है जो देखा वो मेरे पास भी, फिर कानों से जो सुन रहे हैं वो मेरे पास होना चाहिए, स्मेल नाक से, मैंने ये 10 इंद्रियों के द्वारा मन इनके साथ कनेक्ट होके यहां से जो इनपुट मिल रहा है उसकी भरपाई में लगा पड़ा है, उसको फुलफिल करने में लगा पड़ा है। इसको ही कहते हैं काम। और जितना फुलफिल करते हैं, क्या कहा, कामनाओं का कोई अंत नहीं। एक फुलफिल हो भी जाती है, एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी इच्छा ने फिर जन्म ले लिया, दूसरी इच्छा पूरी हुई फिर तीसरी इच्छा ने जन्म ले लिया, और ऐसे करते करते कामनाओं का कोई अंत नहीं। मतलब मन बाह्य दुनिया से ही जुड़ा हुआ है इस शरीर, और टोटल इधर जो इसको इधर भी कम्युनिकेशन करना है वो भूल गया है। तो ये हमेशा पिक्चर मेरे सामने रहे कि मन बीच में है, इधर शरीर इधर आत्मा, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी मन है। इसीलिए देखो राम को बताया कि सीता उसकी चुरा गई, कब चुराई इस राम की सीता, सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण था वहां पे, उसने लक्ष्मण रेखा खींची कि इस रेखा के बाहर मत जाना, लेकिन उसने उल्लंघन किया, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर गई, तब रावण ने उसको पकड़ा। अब ये वास्तव में क्या है, ये मन ही सीता है जिसको लक्ष्य दिया हुआ था, लक्ष्य दिया हुआ है कि इस मन तू इस आत्मा से कनेक्टेड रह ज्यादा, लेकिन मन बोला मैं इधर जाऊंगा बाहर, इधर शरीर है ना, ये 10 इंद्रिया है ना, इस 10 इंद्रियों से दुनिया दिख रही है ना, तो उसको लक्ष्मण रेखा मिली थी, लक्ष्मण उसके साथ, माना मन को लक्ष्य दिया गया था कि तू इस तरफ ज्यादा रहे, इस तरफ नहीं, इस बाहर मत जा, इसकी परिधि को लांग कर, लेकिन सीता ने लांगा, हमारे मन ने उसको लांगा, हमने कहा नहीं हमको तो बाहर की दुनिया ही चाहिए, अंदर किधर सुख है, अंदर किधर शांति है, ये तो बाहर ही है ना सब कुछ तो। और जैसे ही हमने बाहर किया, कहा रावण, रावण माने मैं, ईगो, रावण आया ना, तो मैं पना कि मैं ज्यादा धनवान बन जाऊं, मैं ज्यादा प्रतिष्ठित बन जाऊं, मैं ज्यादा सुंदर दिखूं, मेरी आवाज सबसे ज्यादा अच्छी हो। रावण ने पकड़ लिया। अब राम की सीता को जब रावण ने पकड़ लिया, राम को फिर राम बेचैन हो गया, हमारी आत्मा बेचैन हो गई, छटपटा रही है ना अंदर, चाहे हम कितना ही बाहर भौतिक उपलब्धि, इसलिए आज देखो भौतिक उपलब्धियों के नाम पर लोग आज बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं, इतने फॉरवर्ड कि कई बार जोक्स करते हैं, अरे हमारे दादा दादी लोगों को कुछ अक्कल नहीं था, हमारे पूर्वजों को क्या स्टोव में वो फूंकते रहते थे चूल्हा, क्या हमने बढ़िया बना, क्या वो बैलगाड़ी में जाते रहते थे, हमने देखो वायुयान बना डाले, यही हुआ है ना हमारे साथ। तो हम भौतिकता के नाम पर तो बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन जितना ही इधर आगे चले गए उतना ही अंदर सच्ची खुशी और शांति के लिए छटपटाहट है। तब कहा राम बेचैन है, आत्मा बेचैन है, भले ही उपलब्धियां कितनी भी क्यों नहीं है बाहर की। और जब राम बेचैन हुआ कि सीता मेरी चली गई है, मन मन ही इधर लग रहा है ना बार बार, तो वही सीता है ना, तो अब उस सीता को वापस मैं इस तरफ लाऊं जो उस तरफ चली गई है, वो भी छटपटा रही है उधर जाके, तभी तो देखो मन को टेंशन ही है ना, क्या करूं इतना टेंशन है, या तो टेंशन में या तो डिप्रेशन में, यही हालत है ना दुनिया की। तो वो सीता, वो मन वापस राम को मिल जाए, वो किसकी मदद से हुआ था, वो किसकी मदद से हुआ था, बिना हनुमान के वो संभव नहीं था, बिना हनुमान के संभव नहीं था वो, क्योंकि रावण ने सीता को तो कहां लेकर गया था, लंका नगर में लेके गया था, वहां तक पहुंचना राम के लिए पॉसिबल नहीं था, हनुमान पवन पुत्र। तो पवन पुत्र की जब मदद ली तब जाके राम को सीता मिली। अब हमारा पवन पुत्र कौन, हाँ तभी देखो दादी जानकी को देखो हमेशा कहती है मैंने एक भी श्वास व्यर्थ नहीं किया है, श्वास माना क्या, प्राण वायु, क्यों बाबा कहते संकल्प श्वास कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने दो, मतलब हर सांस आ रही है जा रही है, मतलब हर पल मेरे को चेकिंग रहनी चाहिए, मेरा मन जो उसको लक्ष्य दिया गया है कि इधर कनेक्ट हो, बाबा ने कि यही कहा ना राजयोग के अभ्यास में पहला क्या चाहिए, मन खुद से कनेक्ट हो जाए, मतलब आत्मा से कनेक्ट हो जाए, तो ये अटेंशन हर पल जब तक नहीं होगा तब तक मैं और मेरे पन से छुटकारा संभव नहीं है। तो मैं और मेरापन जो छोड़ना है कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, सिर्फ अटेंशन देने की बात है, मन बीच में है, सिर्फ अटेंशन रखना है हर पल, मन इधर नहीं जाए इधर जाए, फिर इधर जाएगा आदत के अनुसार। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं छोटे बच्चे को कितना ही आप घर में रखो ना दरवाजा बंद करो वो फिर उधर जाता है, और बाय चांस किसी कारण से कोई आया दरवाजा खुल गया भूल गए वो निकल जाता है बाहर। ये मन भी ऐसा ही है, थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं देंगे वो इधर ही जाने वाला है, क्योंकि यहाँ वाले द्वापर युग से जो संस्कार वो तो सतयुग से भी बनाए ना हमने संस्कार, देह वाले संस्कार तो सतयुग से भी बने, पर मैंपन दो युगों तक नहीं था और बाद में आया, तो देह के संस्कार टू मच हो गए ना, तो मन तो बार बार उधर ही खींच रहा, वो चुंबक का काम कर रहा है ना, वो चुंबक का काम कर रहा है, न चाहते हुए भी मन खींच रहा है उधर, तो सिर्फ जरूरत किसकी है, अटेंशन, पहरेदारी, और पहरेदारी माना ही मन को हमेशा याद रहे लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं जीवन में क्या चाह रहा हूं, खुशी चाह रहा हूं, प्रेम चाह रहा हूं, शांति चाह रहा हूं, आनंद चाह रहा हूं, वो दुनियावी चीजों में नहीं है, वो तो मेरी खुद की प्रॉपर्टी जो मेरे को बाप ने मुझे देके भेजी थी,
उसको अलग रख के मैं इधर का। इसलिए देखो दुनिया में एक मान्यता चली आई है कि कई बार बच्चे माँ बाप से अलग होते हैं ना आजकल की दुनिया में, तो भले कहते हमने कमाया है लेकिन कहते नहीं माँ बाप का थोड़ा हिस्सा हमको चाहिए जरूर, तभी हम फलेंगे फूलेंगे। भले हमने कितना भी क्यों नहीं कमाया है लेकिन बाप मुझे 100 रुपया खर्ची देता है ना, नहीं चाहिए, वो मेरा हक है। भले वो 1000 कमा रहा है बच्चा, इतना पैरों पे खड़ा होके उस इतना लायक बन गया, 1000 कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, लेकिन बाप के हाथ के 100 रुपए की खर्ची चाहिए, मेरा हक है उस पे। कहां लाखों कहां 100, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, क्योंकि बाप की प्रॉपर्टी है वो, उसी से हम फलेंगे फूलेंगे। तो परमात्मा ने जो मुझे देकर भेजा था वो मेरी सच्ची प्रॉपर्टी है। प्रेम खुशी जो परमात्मा ने संस्कार मेरे अंदर भरे हैं, बाहर की दुनिया में कितनी ही चीजें प्राप्त कर लूं वो सुख शांति नहीं मिलने वाली है। ये मन को अच्छी से सामने लक्ष्य रखना है, सदा हर पल वो सामने दिखे, ये पिक्चर बिल्कुल सामने क्लियर हो कि इधर कुछ नहीं, इधर बाप की प्रॉपर्टी है, इससे ही मैं फलूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है मेरा, ये होगा तो इसमें भी तरक्की कर लूंगा, नहीं तो तरक्की करते हुए भी नीचे ही दिख रहा हूं, ऐसा ही हो रहा है ना। तो ये लक्ष्य सदा सामने रहे, एक क्लियर पिक्चर, इधर आत्मा इधर शरीर, इधर शरीर के संग में आकर काम क्रोध, तो बाबा ने कहा कि कामना आने के बाद ही कामना की पूर्ति नहीं होती, कामना माना इच्छा, उसकी पूर्ति नहीं होती, फिर क्रोध आता है, और फिर क्रोध आया तो उसके बाद उसके बाल बच्चे धीरे धीरे आने लगते हैं, और इसलिए मैंपन की जड़ कि मन इन 10 इंद्रियों से अपने आप को थोड़ा अलग कर दे। इसलिए क्यों कहते हैं अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी बनने का मतलब ही क्या, ये 10 इंद्रियों से परे अंदर में जो आत्मा विराजमान है, मन को उधर फोकस करो, इधर के बदले इधर। मैं पल खत्म, और तब कहा कि सीता मिल गई राम को, सीता मिल गई ना फिर राम को, हनुमान ने मदद किया, मतलब पल पल श्वासो श्वास मन के सामने ये लक्ष्य रहे, तब जाकर मेरा मैपन छूटेगा, मैं आत्मा से कनेक्ट हो जाऊंगी, और जिस घड़ी में आत्मा से कनेक्ट हो जाऊंगी परमात्मा से कनेक्ट होना आसान है। इसीलिए तो कहते हैं जब तक खुद को नहीं जाना भगवान को नहीं जान सकते, खुद को नहीं जाना तो खुदा को नहीं जान सकते, खुद से कनेक्ट नहीं हुए तो खुदा से कनेक्ट नहीं हो सकते, और खुदा से कनेक्ट नहीं हुए तो उसकी प्रॉपर्टी मिलना संभव नहीं है। तो कितना सिंपल है, अटेंशन की बात है सिर्फ। तो ये दशहरा जो मनायन, इस दशहरे वाली बात को ही सिर्फ सामने रखूं, मैं रामायण को ही सिर्फ सामने रखूं, इसलिए कहा बाबा ने कहा रामायण इस समय की बात है। जैसे रामायण माना क्या होता है, एक्चुअली देखो भारत में तो हम कहते हैं सूर्य दक्षिणायन और सूर्य उत्तरायण, नहीं वो ऋतु परिवर्तन में ऐसा ही होता है ना, तो दक्षिणायन का मतलब क्या होता है, दक्षिण की दिशा में मुख हो जाना, उत्तरायण माना उत्तर की दिशा में मुख हो जाना, अब रामायण माना राम की तरफ मुख हो जाना। तो कहा ना एक है इधर आत्मा इधर शरीर बीच में मन, अब मन का मुख इस तरफ हो जाए रामायण, तो मेरा जीवन ही रामायण, मेरे जीवन से ही रामायण है, तो मेरा जीवन ही रामायण जब बनेगा तब सचमुच अलाय जो है, बाबा ने कहा ना मैं और मैपन की अलाय, माना ही मन जो 10 इंद्रियों से जुटा रहा है वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। दुनिया में भी जो गोल्ड होता है ना प्राकृतिक रूप में जो मिलेगा वो रियल फॉर्म में नहीं मिलता है, वो मिक्स फॉर्म में होता है, लेकिन उसको रियल फॉर्म में लेने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बहुत हार्ड ज्यादा टेम्परेचर पर उसको गर्म करना पड़ता है। तो जब बहुत हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो रियल सोना है, जो समझो कोई एक डेली मिली है, टुकड़ा सा मिला है कि भाई इसमें थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा दूसरा कुछ मिलावट है, तो मैं उसको गर्म करना शुरू किया तो क्या होगा, जो उसमें मिक्सचर है, जो सोना नहीं है, वो गलता जाएगा और गलने के माध्यम से सोना वाला जो धातु है वो अलग दिखेगा, वो अलग लेकिन है अभी भी उसमें ही है, अभी भी उसमें ही वही पात्र में है ना, गला है सिर्फ, गलने के नाम पे अलग अलग दिख रहा है लेकिन अभी इसको मैं अलग कैसे करूं, वो सिर्फ गला है तो अभी भी वहीं पे दोनों, अभी भी दोनों, वो डेले रूप में था, सॉलिड रूप में था, अभी लिक्विड रूप में, अभी भी वो रियल तो नहीं बना ना, रियल अनरियल के साथ मिक्स है अभी भी, लेकिन वो अनरियल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें सुहागा डालना पड़ता है। सुहागा क्या करता है, उस अनरियल को तले पर बिठाते जाता है, जैसे पानी को भी स्वच्छ बनाने के लिए फिटकरी डालनी पड़ती है, तो फिटकरी क्या करती है, पानी के अंदर जो मैल होगी उसको खींच के नीचे लेके बैठ जाती है, तो ऊपर का पानी क्या हो जाता है साफ, तो फिर हम ऊपर का यूज करते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो सोने के लिए क्या करना पड़ता है, सुहागा चाहिए होता है, वो उसमें सुहागा जैसे ही डालते हैं तो वो अनरियल वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, सुहागा उसको पकड़ पकड़ के जो पात्र है उसके दीवालों पर चिपका देगा और ऊपर का जो प्योर गोल्ड है मैं उसको अलग कर सकती हूँ। ऐसे ही मेरे पास भी दो चीजें है ना, आत्मा मिक्स हो गई है ना, लाए थे ओरिजिनल संस्कार, अनादि संस्कार, प्योर संस्कार, बाप वाले संस्कार लेके आए थे, लेकिन हमने देह वाले संस्कार उसके ऊपर खूब चढ़ा दिए, अब इसको अलग अलग करना है। कैसे करेंगे, ज्ञान रूपी फिटकरी को यूज करके, है ना, ज्ञान रूपी सुहागे को यूज करके, तभी का ये ज्ञान को बार बार यूज करना है। मैं आत्मा और ये शरीर, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लिंक है वो मन है, और मन को, क्योंकि मन भी क्या है, उसको ज्ञान नहीं है ना एक्चुअली कि मैं ये कर रहा हूं ये सही है, या मन तो खुशी चाहिए ना उसको, वो अगर बाह्य दुनिया में भी जा रहा है, क्यों जा रहा है, खुशी के लिए जा रहा है, कहीं उसको प्रेम मिल जाए, उसको शांति मिल जाए, पर उसको ये नहीं पता है ना कि अंदर में है, यहां नहीं मिलने वाली, वो उसको ज्ञान नहीं, वो परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, यहां नहीं है, यहां तेरे पास अंदर है। तो जितना बार बार ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, यही मनन चिंतन सुहागे का काम करेगा, लक्ष्य मेरे सामने रहेगा, मन जाने की कोशिश करेगा, फिर ज्ञान जैसे ही चिंतन करेंगे, नहीं नहीं मन कहेगा इधर आ जाएगा ना इधर, और अलाय निकल जाएंगे, रियल गोल्ड बन जाएंगे, और रियल गोल्ड ही मोल्ड हो जाता है। तो हम अपने आप को चेक भी कर सकते हैं इस आधार से कि मेरा मैंपन, मेरापन गया है या नहीं, मैं कितनी परिस्थितियों में अपने आप को मोल्ड कर पाती हूँ। अगर नहीं मोल्ड कर पाती हूँ उसका कारण भले बाह्य रूप से किसी को ना भी दिखता हो ना मेरा मैंपन और मेरापन, लेकिन अंदर से जब मैं चेकिंग करूंगी, कामनाएं सूक्ष्म होती है, बाहर से नहीं पता चलता, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं इच्छा नहीं कहते हो लेकिन रायल रूप में अच्छा कहते हो कहता है ना बाबा ऐसे हा? तो ये मैं अंदर से चेक कर सकती हूँ, बाहर से लोग कह रहे नहीं इसकी इच्छा नहीं, वो तो सब कह रहे मैंने तो कहा अच्छा है, अच्छा है इसलिए मैंने कहा मुझे चाहिए, परंतु वास्तव में ये क्या है, ये इच्छा है, और इसीलिए वहां से मुझे पता चल जाएगा कि मैं अगर परिस्थितियों में मोल्ड नहीं कर पा रही अपने आप को, अंदर में एलॉय है अभी भी, गई नहीं है, मतलब ज्ञान रूपी सुहागे को मैंने ज्यादा यूज किया नहीं, और क्यों नहीं कर पा रही हूं, आज बाबा ने कहा पर चिंतन में लगे रहते हैं, और इसीलिए बाबा ने कहा पर चिंतन माना ज्ञान के अलावा अगर बातचीत में और कुछ करते हो वो सब क्या है, फालतू व्यर्थ पर चिंतन। तो इतना अटेंशन, कोई बड़ी बड़ी विधियां नहीं देता है बाबा, सिंपल अटेंशन, अटेंशन रखा टेंशन गया, तो बस इतना ही अटेंशन रखेंगे हम ज्ञान के सुहागे को यूज करते रहेंगे और ये मन जो इधर अट्रैक्ट है शरीर वाली बातों से जो संस्कार आए हैं काम वो अपने आप छोड़ता जाएगा, मन इधर चलता जाएगा, हम रियल गोल्ड और जैसी परिस्थितियां वैसे ढल जाएंगे, रियल गोल्ड, रियल गोल्ड वाले ही जाके रियल गोल्ड वाली दुनिया में आएंगे। यही तो लक्ष्य है ना, लक्ष्मी नारायण बनना है ना, मन को बार बार याद दिलाना है ना मुझे, क्या बनना है मुझे, लक्ष्मी नारायण, बाबा इतनी बड़ी बादशाह ही दे रहा है मुझे और वो भी कितना सिंपल तरीके से, सिर्फ मन को मेरे में लगा और कोई बड़ी विधि नहीं है। तो बार बार ज्ञान का मनन चिंतन पिक्चर सामने क्लियर हो मुझे करना क्या है, नहीं तो बहुत सारा ज्ञान सुन के वो पिक्चर ही कई बार धुंधली हो जाती कि करना क्या है। पिक्चर सामने, मन बीच में है, इधर शरीर इधर आत्मा, मन इधर जा रहा है उसको खींच के इधर लाना है, बस सबको आत्मा रूप में देखना, मतलब यही हुआ ना, आत्मा आत्मा भाई भाई, जो मैं संस्कार भाव से लेके आई थी ये आत्मा भी वही संस्कार भाव से लेकर आई थी, ये तो यहाँ पे आने के बाद दूसरे चढ़ गए ना, लेकिन मैंने उसको उस ओरिजिनल से देखना है, तो मैं पन खत्म, अल्लाह खत्म, तो क्लास भी खत्म बन गए ना रियल गोल्ड हम रियल गोल्ड बन गए कि नहीं बन गए, समझ के स्तर पे तो बन गए ना, अभी प्रैक्टिकल स्तर पे कब बनेंगे, जब इस समझ को प्रैक्टिकल में रोज थोड़ा थोड़ा लाते जाएंगे। तभी बाबा ने अभी संडे की मुरली में टीचर से मिलते हुए बाबा ने कहा ना, कोई बोझ है हा? ये कोई बोझ सताता तो नहीं है कि मेरा सेंटर कैसा चलेगा, मेरे जिज्ञासु, ये मैं-मैंपन भी हमें छोड़ना है, हम बाबा के तो बन गए, बाबा कहता है ना कि लौकिक संबंधों को तो छोड़ दिया, वहां से तो मोह उठा लिया, लोहे की जंजीरें तो तोड़ डाली, लेकिन अलौकिक मोह में फंस गए, फिर सोने की, बाबा के जंजीर तो जंजीर होती है, फिर चाहे वो लोहे की हो चाहे वो सोने की, तो इतने हद तक मुझे अपनी चेकिंग करना है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, अगर जितना सोचोगी मेरा है इसको बढ़ाने की चिंता करोगी वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन बाबा बैठा है ना, चाहे वो टीचर हो चाहे गृहस्थी में प्रवृत्ति में रहने वाले बाबा के बच्चे हो, टीचर स्टूडेंट को समझेंगी मेरे बच्चे हैं, सेंटर को समझेंगी मेरा घर और वो बच्चे को, वहां पे भी तो मेरा मेरा ही चल रहा है ना, मेरा धंधा मेरा कारोबार, मेरे बच्चे नहीं मानते और टीचर कहेगी हमारे स्टूडेंट हमारा सेंटर तो ये मेरा मेरापन ऐसे ही आ रहा है ना, बाप को दे दो सावल शाह की हुंडी, बाबा ने कहा ना, याद किया ना कि बाबा सकारेगा सावल शाह हुंडी सकारेगा, टाइम हो रहा है वैसे अभी आया नहीं है ना, हम लेते हैं थोड़ा सा कि सावल शाह की हुंडी, बाबा आई थी ना अभी दो तीन दिन पहले मुरली में आया था ना, कि बाप के ऊपर छोड़ दो, ब्रह्मा बाबा हमेशा यही कहता था, वो बैठा है ना वो करेगा, तो क्या है सावल शाह हुंडी सकारेगा, सुनते हैं मुरली में पढ़ते क्या चीज है ये, हाँ क्या चीज है ये, मुरली सुनी होगी ना कई बार, अभी दो तीन दिन में रिसेंटली आया लेकिन कई बार ये शब्द आया होगा, सावल शाह की हुंडी सकारेगा, वाह क्या है उसका मतलब। गुजरात के अंदर एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं नरसिंह मेहता जी, तो मैं बता रही थी मैं-मैंपन का दूसरा उपाय अपने आप को ट्रस्टी समझना, जो ब्रह्मा बाबा हमेशा, बाबा बैठा है ना, कितने पेपर्स है बाबा के सामने, हाँ यज्ञ हिस्ट्री में बैगरी पार्ट को अगर याद करें तो लंच का टाइम हो चुका है, इतने सारे बच्चे भूखे बैठे हैं लेकिन किचन में कुछ भी नहीं है पकाने के लिए, लेकिन बाबा फिर भी निश्चिंत, क्यों, कि मैं थोड़ी जिम्मेवार हूं, मेरे थोड़ी बच्चे हैं ये, किसके बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, तो जिम्मेवार वो है, तो फुरना उसको, मेरे को क्यों, मेरा तो एक ही फुरना है कि मुझे उसको याद करना है, मेरे को तो एक ही फुरना रखना है, और सच में ऐसा हुआ, बाबा ने सिर्फ यही फुरना रखा, काम उसका है, मेरे को तो एक ही फुरना मिला हुआ है, बाप की याद में रहो सब काम आपके हो जाएंगे, और हुआ अचानक से पोस्टमास्टर आता है, एनवलप के अंदर मनी है, पैसे हैं, बाबा बुलाते हैं किसी एक को, जाओ ये पैसे लेके सामान लेके आओ और लंच तैयार करो, सबने खाया भर पेट हो गए। तो सावर शाह की हुंडी माना क्या? तो गुजरात में भी एक नरसिंह मेहता करके एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, तो उस भक्त की बहुत लगन थी परमात्मा कृष्ण प्रेम, असल में वैष्णव थे, पक्के वैष्णव। इसलिए जो महात्मा गांधी की पंक्ति आती है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पर आई जाने रे, एक्चुअली इनकी गाई हुई है वो, नरसिंह मेहता जी की। तो बहुत भक्ति में मग्न रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, द्वारका में कुछ संतों को, साधुओं को द्वारका जाना था, तो उन्होंने, क्योंकि पैसे जब हम कैश के रूप में लेके जाते हैं तो डर बना रहता है ना, कोई रास्ते में कोई लूट खसूट न हो जाए। तो जैसे आजकल हम क्या करते हैं, एटीएम कार्ड लेके जाते हैं या चेक वगैरह से देते हैं, तो उस जमाने में इसको हुंडी कहा जाता था। तो जब उनको द्वारका जाना था तो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की, नरसिंह मेहता जी से, कि आप तो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत भक्ति करते थे तो नाम प्रसिद्ध ही था उनका, तो कहा आपकी तो बहुत प्रसिद्धि है, आपको द्वारका में सब लोग जानते हैं, इसलिए आप अपने नाम से हुंडी लिख के दो। 500 रुपए दिया उनको और 500 रुपए की आप हुंडी लिख के दो, मतलब कैश तो हम आपके हाथ में दे रहे लेकिन आप लिख कर दो, ताकि हम वहां पर जाए तो उनसे वो 500 रुपए ले सके। तो बचत, माना चोरों की जो डर रहता उससे बच गए ना। तो उन्होंने कहा, नरसिंह मेहता जी ने कहा, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरी तो किसी के साथ ऐसी कोई पहचान है नहीं। लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत आग्रह किया साधुओं ने जो जा रहे थे वहां पे द्वारका, कहा नहीं हम जानते हैं आप बहुत प्रसिद्ध है, आपको लिखकर ही देना होगा। और वो उनके आग्रह को टाल नहीं सके नरसिंह मेहता जी, और उन्होंने कागज मंगवाया और लिख के दिया। अब लिख के दिया तो जैसे चेक में लिखा है भाई जितने भी रुपए हैं, तो कहाँ जाऊंगा, जैसे बैंक का बड़ौदा लिखा होगा तो आपको वहां जाना पड़ेगा, अगर स्टेट बैंक लिखा होगा तो वहां जाना, लिखा है स्टेट बैंक और बैंक का बड़ौदा थोड़ी देगा आपको, तो नाम लिखना पड़ेगा ना उनको कि वहां किससे आपको लेना है। तो उसने सावर शाह नाम लिख दिया, किसने, नरसिंह मेहता ने। अब ये वो हुंडी लेके चले गए कहाँ, द्वारका। अब द्वारका में उनको वापस हुंडी बुनवानी थी, अब पूरे द्वारका में पता कर लिया सावल शाह नाम का सेठ यहाँ होता ही नहीं है, और उनकी हुंडी तो उसके नाम से। अब क्या करे बेचारे, पैसे है नहीं उनके हाथ में। हुआ क्या कि ये जो 500 रुपए नरसिंह मेहता जी को कैश देके गए थे, जिसके बदले में ही कह रहे थे हुंडी लेके लिख के दो, वो 500 रुपए से नरसिंह मेहता जी ने क्या किया, क्योंकि भक्ति भावना वाले तो थे, इन्होंने भंडारा, जैसे जिसको हम कहते ना ब्रह्मा भोजन, शहर के लिए उसने सामान मंगाकर भंडारा कर दिया, लंगर कर दिया, ब्रह्मा भोजन कर दिया, अब भंडारा भी पूरा हो गया, मतलब खाने पीने वाले भी खा पी के चले गए। जब पूरा हो गया उसके बाद एक बहुत ही बूढ़ा संत, वृद्ध संत आया भोजन करने के लिए, जबकि भंडारा पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी नरसिंह मेहता जी की जो पत्नी थी उसने क्या किया, जो बर्तन थे उनको समेटा और जो थोड़ा सा उसको आटा मिल गया उससे चार रोटियां बनाई उसने, और वो चार रोटियां उस बूढ़े संत को परोसी। जैसे उस वृद्ध संत ने वो रोटी खाई, उसका चमत्कार क्या, उधर जो द्वारका में जो साधु थे, जो हुंडी भुनवाने के चक्कर में थे, उनके सामने कहते भगवान सावल शाह नाम के सेठ के नाम से वहां प्रकट हुए और उनकी उनकी हुंडी बुनवा दी, मतलब उनके हाथ में 500 रुपए आ गए। तो ये रियल घटना है, ऐसी बनी बनाई कहानियां जो हम कई बार कहते हैं वैसी नहीं है, रियल घटना है। अर्थात इतना हम निश्चिंत जीवन जिए, ट्रस्टी होकर जिए, कि वो बैठा है, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है, मुझे अपने से कनेक्ट होकर उस परम पिता से, शिव बाबा से अपने मन की तार क्लीन एंड क्लियर रखनी है, बाकी सब उसकी जिम्मेवारी, तो मैं और मैपन अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं तो ट्रस्टीपन नहीं है तो गृहस्थीपन है, मैं और मेरा जाल तो आ ही जाता है। तो बहुत सिंपल तरीका है इस मैं और मैपन को खत्म करने का, अटेंशन हर पल, कि मन को जो बाबा ने लक्ष्य दिया है वो लक्ष्य के मुताबिक मन चले, ट्रस्टी होकर चले, वो बैठा है हमारा ख्याल रखने, जीवन की नहीं है उसको सौंपी है ना। किसको सौंपी है? साधारण नाविक को तो नहीं सौंपी है ना। हाँ, तो जिस अच्छे जैसे बाबा कहते हैं ना, सोच समझ कर बाबा के बने ना हम, ऐसे ही तो नहीं बने। तो जब सोच समझ के बने हैं तो उतना विश्वास रखो ना कि वो सब कुछ करेगा। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कितना धनवान अपने समय का लीडिंग बिजनेसमैन, लेकिन जिस घड़ी निश्चय हुआ ये भगवान कह रहा है मुझे कि तू सब कुछ इस कार्य में लगा दे, सारा का सारा, कुछ आठ कन्याएं जिनको दुनिया का अभी ज्ञान भी नहीं है उनके सामने समर्पित कर दिया। क्यों? वो मैंपन से बाहर निकलने के लिए, कि मेरापन नहीं है, मेरा नहीं है, अब सब कुछ किसका हो गया? भगवान का हो गया। और भगवान का उसने किया तो कितना भंडारा भरपूर कर दिया। आज सब कोई किसको याद कर रहा है? आदर्श जीवन अगर देखना है तो क्या कहते हैं? फॉलो फादर, फॉलो फादर। क्या कहते हैं? कहाँ चलना है? लक्ष्मी नारायण की दुनिया में चलना है, कृष्णपुरी में चलना है। तो जितना समर्पण उतना वो ख्याल रखेगा, और जितना समर्पण माना ही मैं और मेरेपन से मुक्त है, तो इतना हमें भी समर्पित होकर, समर्पित होकर मतलब ऐसे नहीं कि सेंटर में रह गए तो समर्पित, मन बुद्धि से सब कुछ हम उसको समर्पित कर दे, बाबा अपने आप हमारे जीवन की नैया को पार लगाएगा। चाहे जो भी जिम्मेवारी दी है, मैं एकमात्र निमित्त हूँ, वो करेगा वो ही, इसलिए मुझे निश्चिंत, मेरी जीवन की नैया पार हो जाएगी, रियल गोल्ड बन जाएंगे। ओम शांति।